हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वेल, उसी वक्त तारा ने अपनी सोच को झटक दिया था और आगे बढ़कर अमन का साथ देने लगी थी, क्योंकि इस वक्त वो अमन के प्यार में पूरी तरह से डूब जाना चाहती थी। वही अमन जो काफ़ी दिनों से शादी, भागदौड़ और सबकी चक्कर में तारा के करीब नहीं आया था, और वो केवल उसके करीब तब आया था जब उसे काली शक्तियों के मालिक अमित ने अपनी किसी दानव के द्वारा उसे वश में करने की कोशिश की थी। तब से अब वो अपनी प्यारी बीवी तारा के साथ बड़े ही मोहब्बत और प्यार के साथ रिश्ता बना रहा था। और प्यार करते करते कब दोनों एक दूसरे से बेखबर पूरी रात एक दूसरे की बाहों में सो गए, किसी को एहसास ही नहीं रहा था। वहीं दूसरी ओर सोनल परी का दिल कटरे कटरे हो रहा था, क्योंकि उसकी मोहब्बत अक्षत खुराना उसकी आंखों के सामने अब धीरे धीरे काली परी यानी सितारा परी के साथ जिस्मानी प्यार करना शुरू करने लगा था, क्योंकि सितारा परी ने उसे अपनी आंखों के द्वारा वश में कर लिया था और उसके बाद वो उसके साथ रिश्ता बनाना चाहती थी, ताकि वो एक बार उसकी बची कुची जवानी भी खा सके और फिर राक्षस की दी हुई शक्तियों का प्रयोग कर सके। इसीलिए उसने जल्दी ही अक्षत खुराना के कपड़ों को उसके जिस्म से अलग करना शुरू कर दिया था। वहीं सोनल परी अब पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि जो नृत्य कार्यक्रम वो कर रही थी सिर्फ और सिर्फ अक्षत खुराना को बचाने के लिए ही कर रही थी। तब उसने सोच लिया था कि अगर आज उसका ये नृत्य कार्यक्रम सफल नहीं होता है और कुल गुरु जाकर उसकी मदद नहीं करते हैं, तो वो इस नृत्य कार्यक्रम के दौरान ही अपने प्राण त्याग देगी। अब जैसे ही सोनल परी के दिमाग में ये बातें आईं, उसने अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर ली थीं, क्योंकि अक्षत खुराना धीरे धीरे बिल्कुल नग्न बदन हो चुका था और काली परी भी अपने कपड़े कम करने लगी थी और उसके साथ रिश्ता बनाने की शुरुआत करने लगी थी। वहीं दादा महाराज जो उस वक्त ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन उस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें इतनी ताकत नहीं थी कि वे काली परी को रोक सकें, क्योंकि काली परी ने एक इंसानी रूप लिया था इस बार अक्षत के साथ रिश्ता बनाने के लिए, और इंसानी रूप पर वे किसी भी कीमत पर वार नहीं कर सकते थे। ऊपर से वे अब जिन महाराज भी नहीं थे, लेकिन अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा अनर्थ होते हुए भी वे नहीं देख सकते थे। इसीलिए मन ही मन में उन्होंने अमन को वहां आने का न्योता देना शुरू कर दिया था, क्योंकि वे समझ चुके थे कि अगर जिन महाराज अमन ही अब इस काली परी को रोक सकते हैं, क्योंकि इस वक्त तिलिस्मी पत्थर की शक्तियां साथ ही कड़े की शक्तियां अमन के पास थीं, और केवल वही इस पृथ्वी पर शक्तियां थे जो इस काली परी को रोक सकती थीं, और दादा महाराज के पास अब कोई ऐसी शक्तियां नहीं थीं कि वे इस तरह से परी पर वार कर सकें, क्योंकि अगर परी की जगह कोई काली शक्ति होती या काली शक्तियों के महागुरु की भेजी हुई कोई शक्ति होती तो उन पर तो आक्रमण कर सकते थे, लेकिन इस तरह से परीलोक से आई हुई परी पर वे आक्रमण किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने अमन को ही वहां बुलाने का निर्णय ले लिया था। वहीं दूसरी ओर अमन जो उस वक्त तारा को अपनी बाहों में लिए गहरी नींद में सो रहा था, जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि दादा महाराज उसे बुलाना चाहते हैं, तो वो तुरंत ही उठ बैठा था। और क्योंकि उसने अभी तारा के साथ ही जिस्मानी रिश्ता बनाया था, तो बिना पवित्र हुए वो दादा महाराज के बगीचे में नहीं जा सकता था, तो इसीलिए जल्दी से उसने उसी वक्त अच्छी तरह से नहाना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी ओर बगीचे में काली परी भी अब बिल्कुल नग्न बदन हो चुकी थी और अक्षत को उसने अपने जिस्म की दावत दे दी थी कि वो अभी और इसी वक्त आए और उसके साथ रिश्ता बनाए, ताकि काली परी अपने आगे के कारनामों को अंजाम दे सके। और सोनल परी, जिसने केवल अपनी आंखें बंद कर ली थीं क्योंकि वो ये सब कुछ देख नहीं पा रही थी, उसने तो ठान लिया था कि अगर आज अक्षत की जान चली जाती है तो वो भी अपनी जान दे देगी और वो हमेशा के लिए खुद को अग्नि दुनिया में बंद कर लेगी। लेकिन इससे पहले कि जिन महाराज अमन बगीचे में आता या फिर काली परी अपने मकसद में कामयाब हो पाती, पूरा बगीचा एक अजीब तरह की जगमगाहट से जगमगाने लगा था। ऐसे लगने लगा था मानो आकाश की बिजली उस बगीचे में आकर रुक गई हो। जैसे ही दादा महाराज ने ये देखा, वे हैरान हो गए, लेकिन अगले ही पल वे हल्का सा मुस्कुराने लगे थे। वे समझ चुके थे कि ये सब कुछ क्या हुआ है, और देखते ही देखते एक बड़ी ही पावरफुल शक्ति सीधा सोनल परी के पास आ गई थी। सोनल उस वक्त नृत्य कार्यक्रम कर रही थी और उस शक्ति ने जैसे ही उन सभी परियों के पैरों की ओर देखा, तो उनके पैर जो उस वक्त नृत्य कार्यक्रम कर रहे थे तुरंत वहीं के वहीं रुक गए थे। और जैसे ही परियों को ये एहसास हुआ कि उनके नृत्य कार्यक्रम को रोक दिया गया है, जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने सामने अपने कुलगुरु को देखा, तो उनकी आंखों से मोटे मोटे मोती बहने लगे थे। अपने गुरु को देखकर उनकी आंखों से मोटे मोटे मोती बहने लगे थे, क्योंकि अपने कुलगुरु को देखना सभी परियों के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी। तो अब जैसे ही उन्होंने अपने कुलगुरु को अपनी आंखों के सामने देखा, तो सभी परियां पूरी तरह से हैरान हो गईं और सभी ने अपना सर झुका लिया था। वहीं सोनल परी तो सीधा घुटनों के बल बैठ गई थी और उसकी आंखों से मोती बहने शुरू हो गए थे। और क्योंकि उस वक्त सब कुछ ठहर गया था, केवल परियां ही एक दूसरे से बात कर पा रही थीं, और जिन महाराज जो अपने शरीर को हिला डुला नहीं पा रहे थे लेकिन अपनी आंखों से ये सब कुछ जरूर देख पा रहे थे। वहीं काली परी और अक्षत खुराना उस वक्त एक दूसरे के बदन से चिपके हुए थे, लेकिन अभी तक उनके बीच वो रिश्ता नहीं बना था जिसकी वजह से अक्षत खुराना की जवानी जा सकती थी। तो इसीलिए देखते ही देखते अचानक से कुलगुरु ने वहां जाकर काली परी को कपड़े पहना दिए थे। साथ ही अक्षत खुराना की ओर देखा तो उसके भी कपड़े पहनाए जा चुके थे। और फिर देखते ही देखते अचानक से कुलगुरु की आंखों से कुछ रंग बिरंगी रोशनियां निकलने लगी थीं, जो सीधा काली परी पर पड़ी थीं, और देखते ही देखते काली परी के अंदर से कितना ही सारा काले रंग का बादल निकलने लगा था। अब जैसे ही बाकी की परियों ने ये देखा, उनका हैरानी के मारे बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि काली परी के अंदर से काली शक्तियों की आत्मा निकल चुकी थी। और इतना ही नहीं, अब काली परी जो कि एकदम काले रंग के कपड़े पहने रहती थी, उनके छोटे से काले बादल के रूप में रहती थी, अचानक देखते ही देखते उसके शरीर पर अपने आप ही सफेद कपड़े आ चुके थे, और वो अब एक सफेद बादल बनकर वहां से गायब होकर सीधा परीलोक में जहां से वो आई थी पहुंच गई। और काली परी के परीलोक में जाते ही अक्षत खुराना, जो पहले 24-25 साल का एक हसीन नौजवान था, वापस से वो एक हसीन नौजवान बन चुका था। और जैसे ही सोनल परी ने ये देखा कि अक्षत खुराना पहले जैसा हसीन नौजवान बन चुका है, तो उसने गुरु का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा किया था और कहने लगी थी, कुल गुरु, अब मेरी तारा की मदद कीजिए। काली परी के साये से आपने हम लोगों को तो बचा लिया है, लेकिन तारा परी का क्या होगा? तारा परी की तो पूरी की पूरी जिंदगी अमन सिंह राठौड़ और उसके जिन अंश के बीच घूम रही है, और अगर यही सब चलता रहा तो तारा परी हमेशा हमेशा के लिए अपने वजूद को खो बैठेगी, और वो राक्षस का कभी अंत नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो अमन से सच्ची मोहब्बत करती है।
तभी कुल गुरु जी कहने लगे थे, तारा की नियति, तारा की किस्मत उसके साथ है। जो कुछ भी किस्मत ने उसके साथ लिखा है वो होकर रहेगा, जिसे कोई भी नहीं टाल सकता है। एक और बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हें ये इंसान पसंद आ गया है, और ये इंसान भी शायद तुम्हें उतनी ही मोहब्बत करता है, इसीलिए हम तुम्हें इस इंसान के साथ यानी कि अक्षत के साथ रहने की इजाज़त देते हैं, लेकिन बिना शक्तियों के। तुम अक्षत खुराना के साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हें अपनी सारी शक्तियां खोनी होंगी। अब जैसे ही सोनल परी ने ये सुना, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, क्योंकि सोनल परी शक्तियों के साथ पैदा हुई थी, और अब इस तरह से अचानक से शक्तियों के बिना रह पाना वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। लेकिन फिर उसने अक्षत खुराना की ओर देखा था और कहने लगी थी, शक्तियां और मोहब्बत में से मोहब्बत जीत गई है, इसीलिए मैं अक्षत के साथ रहना ही चुनूंगी। तो जल्दी देखते ही देखते कुलगुरु ने अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हुए सोनल परी को देखना शुरू कर दिया था, और सोनल परी के अंदर से जितनी भी उसकी शक्तियां थीं, वो सारी की सारी शक्ति अब धीरे धीरे कुलगुरु के अंदर आने लगी थीं, और अब सोनल परी अपनी सारी शक्तियां खो बैठी थी। इतना ही नहीं, उसके जादुई परिजन भी अब उसके करीब नहीं थे, और वो एक नॉर्मल इंसान बन चुकी थी। तब कुलगुरु ने आगे कहा था, ये मत सोचना कि तुम अब एक नॉर्मल इंसान बन चुकी हो तो तुम अब पृथ्वी लोक पर हमेशा हमेशा के लिए ही रहोगी, या फिर तुम्हें मौत आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम एक परी हो, तुमने परी योनि में ही जन्म लिया है। तुम जब तक तुम्हारा मन चाहे तुम पृथ्वी लोक पर रह सकती हो, लेकिन जिस दिन तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारा दिल पृथ्वी लोक से भर गया है और तुम यहाँ नहीं रहना चाहती हो, तो उस दिन अगर तुम 3 बार आंखें बंद करके अपने कुलगुरु को दिल से याद करोगी, और ठीक उसी वक्त तुम पृथ्वी लोक से गायब होकर सीधा परीलोक में चली जाओगी, और परीलोक में जाते ही एक बार फिर तुम्हें तुम्हारी शक्तियां, तुम्हारे जादुई परिजन तुम्हें वापस मिल जाएंगे। अब जैसे ही सोनल परी ने ये सुना, वो कुलगुरु के सामने पूरी तरह से झुक चुकी थी, और देखते ही देखते कुलगुरु समेत बाकी की जो परियां थीं वे भी वहां से गायब हो चुके थे। अब केवल उस बगीचे में अमन, अक्षत खुराना और साथ ही साथ सोनल परी ही रह गए थे, और सोनल परी ने जाकर अब अक्षत खुराना को गले से लगा लिया था, और अक्षत खुराना, जो कुलगुरु की एक एक बात को सुन चुका था, वो समझ चुका था कि जब तक मैं सोनल परी को प्यार दूंगा तब तक वो मेरे पास रहेगी, और जिस दिन भी मैंने उसे थोड़ी सी भी तकलीफ दी, उसे परेशान किया, तो वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली जाएगी। तो इसीलिए अक्षत ने कसम खाई थी कि मैं सोनल परी को कभी भी किसी भी कीमत पर इतनी सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा और हमेशा उसका ख्याल रखूंगा। ये सोचते हुए जल्दी ही वो सोनल परी को लेकर अपने घर की ओर जाने लगा था। वहीं अमन, जिसे उसके दादा महाराज के बुलाने का आभास हुआ था, वो अपने दादा महाराज से मिलने के लिए जाने लगा था, लेकिन जल्दी ही उसे इस बात का आभास हो गया था कि दादा महाराज अब उसे नहीं बुला रहे हैं। तो इसीलिए वो, जो अब पवित्र हो चुका था, पवित्र होकर वो जाकर एक बार फिर तारा को अपनी बाहों में लेकर सो चुका था। वहीं दूसरी ओर काली परी, जो कि अब एक बार फिर सफ़ेद बादल के टुकड़े में बदल चुकी थी, वो सीधा परीलोक में जा पहुंची थी, और वो परीलोक में इस वक्त अपने आप ही उस कारावास में कैद हो चुकी थी जिस कारावास से वो रिहा हुई थी। अब जैसे ही उस राक्षस को इस बात का एहसास हुआ कि काली परी को सजा मिल चुकी है और वो इस वक्त परीलोक के कारावास में कैद है, तब वो राक्षस जोरों से दहाड़ा था, क्योंकि उस राक्षस को इस बात का भी आभास हो गया था कि अगले 7 दिनों के अंदर अंदर जिन्नातों का वंशज भी पैदा होने वाला है। और अगर जिन्नातों का वंशज पैदा हो गया और उसकी 15 दिन के अंदर अंदर जान नहीं ली गई तो उस राक्षस की जान पर बनाएगी और वो राक्षस अपनी जान खो बैठेगा। लेकिन राक्षस किसी भी कीमत पर तारा परी से दूर नहीं रह सकता था, क्योंकि तारा ही उसकी जिंदगी थी, तारा उसका जन्म जन्म का प्यार था और राक्षस किसी भी कीमत पर तारा को नहीं छोड़ सकता था। तारा के लिए उसने अपना पहला जन्म भी कुर्बान कर दिया था और अपना ये जन्म उसने जानबूझकर चुना था। वो सबसे ज्यादा ताकतवर होना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यही ताकत तारा को उससे दूर कर देगी। अब वो राक्षस पूरी तरह से भिन्न होने लगा था, क्योंकि तारा के बिना रह पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। उसने अपने कठोर मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया था। अब उस राक्षस की मदद अगर कोई कर सकता था तो सिर्फ और सिर्फ उसकी पिछले जन्म की माँ ही थी। तो इसीलिए उस राक्षस ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी माँ की आत्मा से मिलने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो ये समझ चुका था कि अगर उस वक्त उसकी मदद नहीं की तो तारा अपनी जिन अंश के साथ परिलोक में आधमकेगी और उसका हमेशा हमेशा के लिए अंत कर देगी। लेकिन राक्षस तारा के बिना नहीं रहना चाहता था। उसने क्या कुछ नहीं किया था तारा को अपना बनाने के लिए, तारा के जिन अंश का अंत करने के लिए। उसने अपना एक प्रतिरूप भी उसने पृथ्वी लोक पर भेज दिया था, लेकिन वो भी तारा का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। लेकिन अब उस राक्षस के पास अगर कुछ साधन था तो सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ थी, इसीलिए उसने अपनी माँ से मदद लेने का फैसला कर लिया था।